नमस्कार साथियों, आप सुन रहे मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी से मैं दिनकर पाथुरकर। अभी हाल ही में देश की नई संसद में महिलाओं के लिए महिला बिल पारित हुआ है और इस संबंध में हमारे साथ रूबरू होने आ रही है छिंदवाड़ा जिले की महिला अधिवक्ता सुश्री आराधना भार्गव जी। नमस्ते दीदी।
नमस्कार
दीदी। अभी हाल ही में जो देश की नई संसद में जो सत्र हुआ, उस सत्र में महिलाओं के लिए महिला बिल पारित किया गया, इस संबंध में आपकी क्या राय है?
जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ, हम उसका स्वागत करते हैं। ये बहुत अच्छा हुआ और ये ऐतिहासिक अन्याय हुआ महिलाओं के साथ। ये तो 75 साल पहले हो जाना था। महिला और पुरुष बराबर है तो महिला आरक्षण बिल पारित करने में इतना लंबा समय क्यों लगा? और दूसरा, जो नाम रखा उस विधेयक का, उससे तो ऐसा लग रहा कि जैसे महिलाओं पर कोई एहसान करने का काम इस सरकार ने किया। तो हम तो उस नाम का भी विरोध करते हैं। अब सवाल आता है कि ये आरक्षण बिल पास होने के बाद क्या अभी नवंबर में चुनाव होने हैं, उसमें महिलाओं को लाभ मिल पाएगा, या 2024 में जो चुनाव होने हैं लोकसभा के, उसमें लाभ मिल पाएगा? तो साफ तौर पर यह स्पष्ट है कि ना नवंबर के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण बिल का लाभ मिल पाएगा और ना 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसमें महिलाओं को इस आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर इस सरकार की ये मंशा थी कि महिलाओं का आपका लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण करना है, तो 5 साल पहले अगर ये सरकार इसको करती तो इसका लाभ महिलाओं को साफ तौर पर दिखाई देता। अब लाभ क्यों नहीं मिलेगा, ये जुमला बनकर क्यों रह जाएगा, उस बात को समझना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब तक जनगणना नहीं होगी, पहले तो इन्हें जनगणना करानी पड़ेगी। अब 2021 में जो जनगणना होनी थी, 2021 में आपने जनगणना नहीं कराई, तो आप जनगणना कराओगे कब? क्या इसी तरह बढ़ाते चले जाओगे? तो ये स्पष्ट है कि भाई इनका कोई मन महिलाओं को सत्ता में पहुंचाने का नहीं है, फिलहाल तो नहीं है इनका। फिर दूसरा, परिसीमन होगा, कब परिसीमन होगा ये भी स्पष्ट नहीं है। तो क्या 2029 में इसका लाभ मिलने वाला है? और अगर सरकार की ये मंशा है या विपक्ष में बैठी पार्टियों की ये मंशा है कि महिलाओं को हमें सत्ता तक पहुंचाना है, महिलाओं के पक्ष की बात हमें लोकसभा और विधानसभा में लानी है, महिलाओं के पक्ष और पीड़ा से संबंधित कानून अगर विधानसभा और लोकसभा में लाने हैं, तो इन्हें अपने पार्टी में 50% आरक्षण देना चाहिए। इससे तो किसी ने नहीं रोका। आप दीजिए महिलाओं को टिकट, महिलाओं को संसद के वहां पर भी पहुंचाइए, संसद में भी पहुंचाइए और विधानसभा में पहुंचाने का काम करिए, तब हम ये मानेंगे कि सरकार की मंशा महिलाओं के प्रति साफ है। हम तभी मानेंगे कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो ये चाहती हैं, जिन्होंने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया, वो अभी नवंबर में हमारे मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने हैं उसमें महिलाओं को आरक्षण देने का काम इन सब पार्टियों को करना चाहिए। हमारी तो मोबाइल वाणी के माध्यम से सरकार को ये कहना है कि आप सभी को कहिए कि वो अपनी अपनी पार्टी में महिलाओं को आरक्षण देने का काम करें।
दीदी, दीदी, जैसा कि मोबाइल वाणी पर अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व आपका एक साक्षात्कार हुआ था और वो साक्षात्कार था लाडली बहना बनाम नारी सम्मान योजना पर। उस समय भी आपने यह मुद्दा उठाया था कि राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पार्टियों में 50% आरक्षण महिलाओं को देना चाहिए और अभी ये बिल पास होना, क्या इनसे आपको क्या लगता है कि महिलाओं को इसका लाभ हो पाएगा या नहीं?
फिलहाल तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिलहाल तो आप लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को पहुंचा ही नहीं रहे हो, उन्हें लाभ कहाँ से होगा? और आप इस बात को देखें, पुरुष मतदाता की तुलना में महिला मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ा है, यानी लोकतंत्र की तरफ रुझान महिलाओं का जागा है। जिस तरह से घर में वो अपनी जवाबदेही से अपने घर को संवारती है, उसी तरीके से वो चाहती है कि इस देश को भी संवारे। और ये जो बैठे हैं पितृत्मक समाज के लोग लोकसभा और विधानसभा में, ये कतई नहीं चाहते कि महिलाएं आए, क्योंकि महिला अगर विधानसभा और लोकसभा में पहुंचेगी तो फिर भ्रष्टाचार खत्म होगा। जिस तरीके से वो एक ममत्व के साथ घर को चलाती है, घर के एक एक व्यक्ति का वो ध्यान रखती है, बुजुर्ग का ध्यान रखती है, महिलाओं का ध्यान रखती है, बच्चों का ध्यान रखती है, उसी तरीके से एक ममतामयी तरीके से देश की लोकसभा और विधानसभा चलेगी। और भ्रष्टाचार को अगर खत्म करना है तो अधिक से अधिक मतदाताओं को महिला उम्मीदवारों को चुनकर लाना चाहिए, तब देश की समस्याएं सुलझेंगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। क्योंकि अभी तो सिर्फ जुमले पे सरकार चल रही है, सिर्फ झूठ बोलकर सरकार चल रही है। अभी भारत के उस दिन संसद में जब पहली बार सब लोग उपस्थित हुए, जिस दिन महिला विधेयक पारित हुआ, सबके बस्ते में संविधान दिया गया, और उस संविधान से समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दिया। तो भाई चुपके से आप ये काम कैसे कर सकते हो? ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये तो बहुत बड़ा धोखा है, ये तो क्रिमिनल अपराध है, ये आपराधिक कृत्य है और इस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए जिन्होंने इस तरीके के कृत्य किए हैं। तो जब महिलाएं बैठेंगी तो इस तरह का फ्रॉड नहीं होगा और हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और हमारी महिला मतदाताओं को कहते हैं, आप जितना ज्यादा जागृत होंगी उतना ज्यादा हमारी ताकत बनेगी, उतना ज्यादा महिलाओं के पक्ष में कानून बनेंगे, उतना ज्यादा ये जो पूंजीपतियों की जो सरकार बन रही है, जिसमें समाजवाद शब्द को हटाना ही इस बात का प्रतीक है कि हम पूंजीवाद को लाना चाह रहे हैं, और पूंजीपतियों के इशारों पर जैसे वो तीन किसान विरोधी कानून बने थे, उसी तरीके के देश में कानून बनाने का काम बहुत तेज गति से चल रहा है। इसलिए महिला मतदाताओं से विशेष आग्रह है कि जिस तरह आप अपने घर को चौकन्नी निगाहों से देखती हैं, उसी तरह देश को भी देखिए, ताकि हमारा देश बच सके, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को हम बचा सके, ये हम सब का प्रयास होना चाहिए।
दीदी, जैसा कि अभी आपने अपने शब्दों में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को शब्दों को हटाने की बात कही है, जबकि इस देश में देश की जो पहचान है विश्व में इस देश की जो पहचान है वो सबसे बड़े लोकतंत्र की पहचान है और धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में पहचान है। अब जब धर्मनिरपेक्ष ही शब्द हटा दिया गया तो अब इस देश की क्या पहचान विश्व में रह जाएगी?
सवाल तो पहला ये है, क्या आप चुपचाप से हटा दोगे? कोई पाठ्यक्रम है? भारत के संविधान में ये शब्द 1942वां संविधान संशोधन करके किया गया, और ये बात स्पष्ट है कि आप संविधान में कहीं पर भी संशोधन कर सकते हैं, पर उद्देशिका में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये जो बात मैंने कहा कि आपराधिक कृत्य किया है सरकार ने, और ये क्षमा करने योग्य नहीं है, आपराधिक प्रकरण इन पर दर्ज करना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ये हमारा और आपका ये दायित्व है कि संविधान से जो शब्द को इन्होंने ऐसे विलोपित नहीं कर सकते, तो जो काम किया है तो वो तो दुनिया में फिर हम ऐसी का पात्र बनेंगे। तो भाई संविधान बनाए उसकी एक प्रक्रिया है, उसने ये उल्लेख किया है कि कहाँ पर आप परिवर्तन कर ही नहीं सकते, तो आपने कैसे उस शब्द को हटा दिया? और इस बात को तो मोबाइल वाणी ने जो लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा, तो लोगों तक, क्योंकि आम जन व्यक्ति का है व्यस्त, अरे गैस की टंकी नहीं मिल रही है, राशन नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं है, राशन की दुकान पर खड़े हैं, बीमार है, अस्पताल में लाइन पर खड़े हैं, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, स्कूल सरकारी स्कूल बंद है, आम व्यक्ति इसमें लगा हुआ है, उस तक ये बात पहुंचे पहुंचाने का काम मोबाइल वाणी के माध्यम से हो रहा है कि इस सरकार ने बड़ी साजिश के साथ देश में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारत के संविधान से हटा दिया है। जब आम व्यक्ति तक ये बात पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर जनता इसका खुलकर विरोध करेगी।
दीदी, एक आपसे हम अंतिम प्रश्न जानना चाहेंगे। अभी आपने मोबाइल वाणी के साथ अपनी बातों बातों में एक शब्द कहा है जनगणना का, और ये महिला बिल जो पास हुआ है तो इसके लाभ की भी यदि बात आती है तो क्या इस देश में जातिगत जनगणना की आवश्यकता है, और यदि है तो आज तक क्यों नहीं हुई?
जातिगत जनगणना की तो आवश्यकता है। जातिगत जनगणना होगी तभी तो हमें पता चलेगा कि प्रतिनिधित्व किसका हो, क्योंकि जातिगत जनगणना करोगे तभी तो महिला मतदाताओं का होगा कि भाई कौन कौन सी जाति के कितने लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए, और जातिगत जनगणना सरकार खतरा क्यों दे रही है। तो जनगणना कराने का काम भी सरकार नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार पर किसी का दबाव नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट तक को तो मानने का काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे निरंकुश सरकारों को तो सबक सिखाने की जरूरत है।
यदि धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया गया है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया गया है, और जातिगत जनगणना की आप पक्षधर हो, तो इसके लिए आप अपने स्वयं एवं संगठन के माध्यम से अग्रिम आने वाले दिनों में क्या प्रयास करोगी? जो
हम तो अपने संगठन के माध्यम से, किसान संघर्ष समिति के माध्यम से, हम लोग बहुजन संवाद यूट्यूब चैनल चलाते हैं उसके माध्यम से जन जन तक इस बात को पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। आज संयुक्त किसान मोर्चे का प्रदेश में सम्मेलन है रीवा में भी यह बात उठाई जाएगी, और इसके खिलाफ देश का किसान, देश का अन्नदाता खड़ा होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका कि आपने मोबाइल वाणी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात साझा की, और जहां महिला बिल का समर्थन किया है वही महिला बिल में जो खामियां है उसके ऊपर भी अपना ध्यान आकर्षण किया, साथ ही आपने समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने पर अपनी आपत्ति बताते हुए जातिगत जनगणना का समर्थन भी आपने किया है, उन्हें एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।